તારીખ 5/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 572 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 497
પત્ર 572 ગુજરાતીમાં
454 છે.
અંબાલાલ ભાઈ પર કાંઈ પત્ર અંબાલાલ ભાઈ સારા પત્ર મેં સત્પુરુષ કે પ્રતિ ભક્તિ કા વિષય નિરૂપણ કિયા હૈ ઓર ઇસકા મહત્વ દર્શાયા હૈ. જ્ઞાની પુરુષ કે પ્રતિ ભક્તિ હોતી હૈ તો ઇસસે ક્યા લાભ હોતા હૈ, એ પત્ર કા વિષય હૈ. સર્વ વિભાવ સે ઉદાસીન ઓર અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાય કો સહજપણે સે આત્મા પરિણમન કરે ભજે ઉસકો ઉસે શ્રીજીન ને તીવ્ર જ્ઞાન દશા કહી હૈ. તીવ્ર જ્ઞાન દશા સે જીવ કી મુક્તિ હોતી હૈ. ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન દશા, તીવ્ર જ્ઞાન દશા કહો યા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન દશા કહો, જો મુનિ દશા સે ઉપર ઉપર કી દશા હૈ. મુનિ દશા મેં ભી ઉત્કૃષ્ટ દશા હૈ, શુક્લ ધ્યાન કી દશા જિસકો બોલને મેં આતી હૈ. સર્વ વિભાવ સે ઉદાસીન, કિસી ભી પ્રકાર કા વિભાવ હો ઉસસે ઉદાસીન, મેને ઉસસે વિમુખ હો કરકે એસે પરિણામ જિસકો નહીં હોતે હૈ. વિવાહ કે પરિણામ જિસકો નહીં હોતે હૈ ઓર અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાય કો સહેજ રૂપ સે આત્મા પરિણમન કર લે. હિન્દી મેં ભી પરિણમન કર એસા લિખા હૈ. ભજે અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાય ને સહજપણે આત્મા ભજે, ક્યા લિખા હૈ ભજે લિખા હૈ, સેવન કરે, સેવન કરે એસા લિખા હૈ. અત્યંત શુદ્ધ મેને પૂર્ણ શુદ્ધ અપને અવસ્થા કો આત્મા પરિણમન કરને લગે સહજ રૂપ સે, ખીચાતા નહીં કરકે નહીં, સહજ રૂપ સે ખેંચતાણ કર્યા વિના સહજ સહજપણે પૂર્ણ શુદ્ધ અવસ્થાને આત્મા પરિણમે ઉસે શ્રીજીન વિતરાગને તીવ્ર જ્ઞાન દશા કહી હૈ. ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન દશા હૈ કે આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ પરિણામે પરિણમન કરને લગા. જો દશા આયે બિના, એસી દશા આયે બિના કોઈ ભી જીવ બંધન મુક્ત હોતા નહીં, બંધન સે મુક્ત હોકર કે મોક્ષ દશા કો પ્રાપ્ત નહીં હોતા. એસી દશા આયે તો મોક્ષ દશા હોતી હૈ, એસી દશા હુએ બિના કિસી કી મોક્ષ દશા નહીં હોતી હૈ. એસા સિદ્ધાંત શ્રી જીનને પ્રતિપાદન કિયા હૈ જો અખંડ સત્ય હૈ. એસા સિદ્ધાંત જિનેશ્વર દેવને અપને દિવ્ય ધ્વનિ મેં પ્રતિપાદન કિયા થા વો બિલકુલ અખંડ સત્ય હૈ, ઉસમે કોઈ ફેરફાર નહીં હૈ. હમકો ભી યે પ્રતીત આતી હૈ, વિશ્વાસ આતા હૈ કે એસી દશા શુદ્ધ દશા હુએ ઓર વિભાવ દશા નહીં હો ઉસી કોઈ મોક્ષ દશા પ્રાપ્ત હોતી હૈ, દૂસરે કો મોક્ષ દશા પ્રાપ્ત હો સકતી નહીં હૈ. મુક્ત દશા, જીવન મુક્ત દશા ઉસી કો હી હોતી હૈ. કુછ એક જીવ સે, કિસી એક જીવ સે એક યહ જ્ઞાન દશા કા વિચાર હો સકના યોગ્ય હૈ. એસી તીવ્ર જ્ઞાન દશા કા વિચાર મેને સમજ પરખ પહેચાન કુછ એક જીવ કર સકતે હૈ, સબ કર સકતે નહીં હૈ. જો જ્ઞાની હૈ વહી इसका विचार कर सकते हैं, सामान्य जीव इसका विचार नहीं कर सकते कि दशा कैसे होती होगी, अत्यंत शुद्ध परिणाम कैसे होता होगा, और वो भी सहज रूप से, सहजपने से ऐसा परिणाम हो जाए और आत्मा मोक्ष को प्राप्त करे, इसका सही विचार सही समझ कुछ एक जीव को आता है, सबको नहीं आ सकता।
हाँ
नहीं, ये दशा नहीं बात नहीं है, वो मुनि दशा के ऊपर की बात है, उत्कृष्ट शुक्र ध्यान की बात है, क्योंकि जीवन मुक्त बंधन मुक्त हो जाए ऐसी दशा आए बिना कोई जीव बंध से मुक्त होकर के मोक्ष दशा को प्राप्त करे ऐसा बन सकता नहीं है। सर्व विभाव से उदासीन दिया है वहां, कोई भी विभाव का अंश वहां नहीं रहे, और अत्यंत शुद्ध पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त करे, तो सर्वस्थान वाली बात नहीं है, ऊपर की बात है, और उसकी समझ उसकी पहचान सबको आती नहीं है, कुछ एक जीव को आती है। हाँ ज्ञानी को आती है, अज्ञानी को भी वो मोक्ष दशा की पहचान नहीं आती है, क्योंकि सामान्य आवे आठो ख्याल आवे उत्कृष्ट पात्र हो तो, ये उत्कृष्ट पात्र हो तो, यथार्थ ख्याल तो ज्ञान दशा ना परिणमन बाद आवे, केम के त्यां ये जाति प्रगट थाय छे, केवल ज्ञान नी जाति चतुर्थ गुण स्थान से सम्यक ज्ञान रूप परिणमन होकर, सम्यक ज्ञान है वो जाति है, सम्यक मिथ्या वो ज्ञान की जाति है, वो जाति प्रकट होती है मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में, इसके पहले नहीं होती। क्यों नहीं, क्यों इस दशा का विचार नहीं होता, ये दशा गहन दशा है, उंडी दशा है, मोटी मोटी स्थूल दशा नहीं है, क्योंकि अनादि से अत्यंत अज्ञान दशा से इस जीव ने प्रवृत्ति की है, अज्ञान दशा में तो अत्यंत अत्यंत अज्ञानपणे प्रवृत्ति किया है, और वो प्रवृत्ति एकदम असत्य और असार ऐसा समझ में आ जाए, और उसकी निवृत्ति सूझे और उसका नाश कैसे हो किया जाए ऐसा सूझ जाए, ऐसा होना बहुत कठिन है। अज्ञानी को क्यों मालूम नहीं पड़ता, संसारी जीव को ऐसी गहन दशा का विचार क्यों नहीं हो सकता, यही कारण है कि उसने जो अनादि से परिणमन किया है वो अत्यंत विपरीत दशा ज्ञान विपरीत ज्ञान से परिणमन किया है, अत्यंत ज्ञान मैंने अत्यंत विपरीत ज्ञान रूप परिणमन क्या है, और प्रवृत्ति भी ऐसी की है, मैं शरीर से कार्य कर सकता हूँ, मैं अनेक प्रकार के मेरे संयोग का सुधार बिगाड़ कर सकता हूँ, ऐसी प्रवृत्ति किया है, समझ भी ऐसी और प्रवृत्ति भी ऐसी, धर्म के क्षेत्र में आया तो भी शरीर से मैंने पूजा किया, शरीर से मैंने उपवास किया, शरीर से मैंने संयम पाला, ये सब मेरी क्रिया है, मैंने किया है, ऐसी प्रवृत्ति भी ऐसी अत्यंत ज्ञान से ही किया है, भिन्न आत्मा की दशा का पहचान कभी किया नहीं, और ऐसी प्रवृत्ति एकदम असत्य है, बिल्कुल असत्य है, झूठ है, ये प्रवृत्ति है बिल्कुल, आत्मा एक परमाणु की अवस्था को भी आत्मा कर सकता नहीं है, एक परमाणु की अवस्था आत्मा नहीं कर सकता तो अनंत परमाणु की अवस्था आत्मा कर सके वो बात संभव नहीं है, परंतु संसार में कोई ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य की परिस्थिति है कि जीव को असत्य का आग्रह कराने वाली है, क्या कराती है, असत्य का आग्रह करा दे, देखो इसने उसका भला किया, उसने उसका बुरा किया, उसने इतना बड़ा बड़ा काम किया, ऐसे बड़े बड़े काम भी होते हैं ना, जहाँ नदी हो तो ऊपर पुल, समुद्र के ऊपर पुल बांध देते हैं, कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं। जीव करता है कि नहीं करता है? एक परमाणु का कार्य जीव नहीं कर सकता। जीव ज्ञान करे या जीव राग द्वेष करे, जीव की अवस्था में ज्ञान और राग द्वेष उतना ही कार्य में उसका कार्य क्षेत्र समाप्त हो जाता है। आगे का कार्य क्षेत्र उज्ज्वल परमाणु का कार्य क्षेत्र जीव का नहीं है। वो स्वयं परिणमन करता है, प्रत्येक परमाणु प्रति समय स्वयं परिणमन करता है और उसको परिणमन करते हुए कोई रोक भी सकता नहीं है। जो नहीं करता हो उसको करा सके नहीं और कर सके उसको रोके भी नहीं, कर सके नहीं रोक सके नहीं, तो स्वयं परिणमनशील है। एक सेकंड में असंख्य बार, कितनी बार, लाख करोड़ अरब नहीं, इससे ज्यादा असंख्य बार परिणमन करना उसका स्वभाव है। उसके परिणमन को कोई रोक सकता नहीं है। लेकिन मकान नया बनाता है तो कहेंगे कि हमने बनाया है, मिस्त्री ने बनाया, सुतार कारीगर ने बनाया, और पुराना किसने बनाया? नया इसने बनाया, पुराना किसने बनाया? अभी ये मकान पुराना हो गया, इतने साल में, 50 साल में बिल्कुल पुराना हो गया, किसने पुराना किया? कि प्रति समय प्रत्येक मकान का प्रत्येक परमाणु परिणमन कर रहा है, उसके परिणमन को कोई रोक सकते नहीं है। एक किताब कपबोर्ड में वैसे के वैसे रख लो, 5 साल तक खोलो भी नहीं, छुओ भी नहीं, और उस पर प्लास्टिक का कवर भर सब रख करके पैक करके रखो, और 5 साल बाद उसको खोलो, और नई किताब रख करके उसका मिलान कर लो, पता चल जाएगा कि ये नई है ये पुरानी है। किसने पुराना किया? कोई छुए भी नहीं थे, स्पर्श भी नहीं किया था। ये परिणमन चलता ही रहता है, जीव भी परिणमन किए बिना रहता नहीं, पुद्गल परमाणु भी परिणमन किए बिना रहता नहीं है। लेकिन अत्यंत अज्ञान दशा से जीव ने प्रवृत्ति की है, वो प्रवृत्ति एकदम असत्य है, पूरे पूरे असत्य है, नितांत असत्य है और असार है। उसमें कोई कितनी भी प्रवृत्ति किया हो, वो प्रवृत्ति में कोई सार माने सुखदायक नहीं है। सार मैंने सुखदायक, असार मैंने दुखदायक, ऐसा एकदम दुखदायक समझ में आ जाए और ऐसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसी सूझ आ जाए, ऐसा बनना बहुत कठिन है। ऐसा परिणमन में आना, जीव को समझ में आना बहुत कठिन है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग जिनने निरूपण किया है कि जो मार्ग आराधन करने से सुलभ मने से ज्ञान दशा की उत्पत्ति होती है, वो ज्ञान दशा की निवृत्ति, इसकी असारता सही समझ आने के लिए ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग। कैसा भक्ति मार्ग? भजन गाने रूप भक्ति मार्ग ऐसा नहीं बोला है, तो चलो 2-4 गीत गालो तो भक्ति कर ली, ऐसा नहीं। आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग, ज्ञानी पुरुष का आश्रय करना मतलब क्या होना है? कि उसकी आज्ञा में रहना, वो जैसा कहे वैसा करना, और जैसा कहे इससे आगे पीछे कुछ करना नहीं, गड़बड़ करना नहीं। होमवर्क दिया कि ऐसा करो तो ऐसा ही करना, फिर दूसरी बात को बीच में लाना नहीं, अपनी कल्पना से कोई बात को जोड़ना नहीं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। आगे पीछे जो भी हमारी समझ हो उस समझ पर चौकड़ी लगा देना। शून्य लगा देना, पहला ने समझ ऊपर मींडू लगा, मींडू मुकी देव, गुजराती में शू के एना ऊपर मींडू मुकी देव, जो बात कहे उसका अमलीकरण करना, बात को समझ लेना और उसका अमलीकरण करना, उसको आश्रय करने रूप भक्ति बोला है। श्री गुरु का कहा तो माने नहीं, पर भजन भक्ति अच्छी करे, वो जैसा परिणमन करने को कहे ऐसा तो परिणमन करे नहीं, पर दूसरी दूसरी भजन भक्ति सेवा सब कुछ करे तो आश्रय रूप भक्ति मार्ग है नहीं। इसलिए कहा कि ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग श्री जिनने निरूपण किया है, मैं कहता हूं वो बात नहीं है, ये बात तो जिनेश्वर देव ने कही है कि जो मार्ग आराधन करने से, मतलब उसकी आज्ञा को उठाने से, आराधन करने से, सुनने से नहीं, सुन लिया ज्ञानी ने कहा, हमने सुन लिया और मान भी लिया, सम्मत कर लिया, हम कहना के ना देते हैं, लेकिन परिणमन करने की बात, वो बात पर आगे नहीं बढ़ता है तो आराधन नहीं करता है, सुनता है किंतु आराधन नहीं करता है। आराधन करने से, सुलभपने से, बहुत सहजता से, बिना कठिनाई ज्ञान दशा की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान दशा की उत्पत्ति होती है तो मुक्त दशा कैसे होती है, वो गहन दशा का विचार करने के वो सक्षम होता है, उसकी क्षमता आती है उसको। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन स्थापित किए बिना यह भक्ति मार्ग सिद्ध होता नहीं। ऐसा जो आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग है, भक्ति नहीं किया, भक्ति को मार्ग बोला है, उपाय बोला है, इलाज बोला है, तो ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित किए बिना भक्ति मार्ग सिद्ध होता नहीं है। मन को स्थापित करना मतलब क्या होता है कि हमारी मनमानी हमको करनी नहीं है, जीव धर्म के क्षेत्र में आकर भी अपनी मनमानी करता है, अपने को रुचे वो कर लेता है, बात तो अनेक प्रकार की आती है, उसमें जो बात अपने को रुचे वो बात को पकड़ता है, दूसरी बात को छोड़ देता है, हमारे प्रयोजन की बात कौन सी है ऐसा नहीं लेता है, अपने को जो बात अच्छी लगे उसको उठाओ, दूसरे को रहने दो, तो उसने मन को स्थापित नहीं किया। अपने मन से नहीं करना है, हाँ, कुल परंपरा में विकृति आई है, वो इसका क्या करोगे, हमारे कुल परंपरा में ऐसा चला आया है इसलिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें आगे विकृति आ गई और उसकी परंपरा चालू हुई है, उसका क्या करोगे, असली परंपरा क्या थी वो क्या मालूम पड़े, वो ज्ञानी पुरुष के बिना मालूम पड़ेगा
नहीं, नहीं।
हाँ, मूल मार्ग बताया, इसलिए कृपालु देव ने भी काव्य ऐसा लिखे, मूल मार्ग सांभळो जीनो, मार्ग सांभळो जीनो नहीं, मूल मार्ग सांभळो, क्यों कि अभी जो जिन मार्ग है, जिन संप्रदाय है, वो मूल मार्ग में चलता नहीं है, यही कारण है। विकृतियां बहुत आई, 2500 साल में भगवान महावीर स्वामी को सिद्धालय में पधारे 2500 साल हो गया, 2500 से भी ज्यादा हुआ, तो उसने पीरियड में बहुत प्रकार की विकृतियां चालू हो गई और उसकी परंपरा भी चलने लगी, और मूल मार्ग हजारों गांव, हजारों योजन दूर चला गया है। तो दिखते हैं कि वर्तमान में संप्रदाय की परिस्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि जिनेंद्र देव का मूल मार्ग से लोक समूह लाखों योजन दूर जा रहे हैं, ऐसा लिखते हैं। बहुत दूर जाते हैं लोग, उन्हें उल्टा चलते हैं। हाँ, आज्ञा में नहीं रहे, आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग को छोड़ दिया। जो भी गड़बड़ हुई है वही कारण से हुई है। सही बात तो है कि श्री गुरु की आज्ञा में नहीं रहे तो गड़बड़ हुए बिना रहने, ये भी गड़बड़ है बड़ी। आज्ञा में नहीं रहे वही बड़ी गड़बड़ है, और यही इतिहास बोलता है, हमारा इतिहास वही बात को बोलता है। स्पष्ट करे लेकिन स्वीकार करना, अंगीकार करना, उसका आदर सत्कार करके शिरोधार्य करना, ये वही बात होनी चाहिए ना। और उसमें अपनी भलाई है, किसी के लिए तो करना नहीं है। कैसे पड़े, कैसे होगा, तो प्रेम के कारण से के द्वेष के कारण से हाँ, तो फिर उसमें तो कोई तकलीफ आने वाली बात है नहीं। ये तो वन में ट्रैफिक होता है, जो आश्रय रूप भक्ति मार्ग है वो तो वन में ट्रैफिक होता है, उसमें तो दूसरी बात आ सकती
नहीं है।
ज्ञानी पुरुष के चरण में मन स्थापित किए बिना यह भक्ति मार्ग सिद्ध होता नहीं, मतलब प्राप्त होता नहीं है। सिद्ध होना मतलब प्राप्त होना, प्राप्त नहीं होता। जिससे बार बार ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने का जिनागम में जगह जगह पे कथन किया है, ठिकाने ठिकाने है कथन के रूप है। कृपाणु देव ने जिनागम पढ़े थे और उसमें से वो बात निकाली उन्होंने, अरे जगह जगह पे वो बात तो किया है कि तुम आज्ञा से चलो, आना ये धम्मो और आना ये तो वो। ऋषभदेव भगवान ने अपने 98 पुत्र को यही उपदेश दिया था, आता है 194 में लिया है। और सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को भी यही उपदेश दिया था। दो दृष्टांत क्यों दिया, कि सतयुग के चतुर्थ आला के प्रारंभ में ऋषभदेव भगवान ने जब उपदेश दिया तो यहां से प्रारंभ किया, और ये 98 पुत्र मोक्ष में गए, और अंतिम केवल पंचम आला में केवल ज्ञान को प्राप्त किया जम्बू स्वामी हुए जो मथुरा से गए। तो पहले से लेकर आखिर तक वही बात है, कोई बीच में बिजी दूसरी गड़बड़ नहीं है, इसलिए वो दृष्टांत दिया है कि प्रथम केवली का भी यही उपदेश है और अंतिम केवली का भी यही उपदेश है। बाकी के सब बीच वाले केवली जितने भी हुए लाखों, ये लाखों केवली को एक ही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। इसलिए फिर बार बार ज्ञानी की आज्ञा आराधन करने का जिनागम में स्थान स्थान पर कथन किया है, यानी बार बार उपदेश बहुत जगह पे उपदेश दिया है। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन का स्थापित होना प्रथम कठिन पड़ता है, क्योंकि अनादि से हमारा मन स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। जो स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, निरर्गल प्रवृत्ति करता है, निरर्गल मैंने क्या, जिसको कोई कंट्रोल नहीं है, बिना कंट्रोल मन की प्रवृत्ति चल रही है, उसको इस मन को बांध करके ज्ञानी पुरुष के चरण में लगा देना, बांध देना, एक खूंटे पे बांध देना, तो थोड़ा कठिन तो पड़ेगा। अपनी मनमानी बहुत किया है इसलिए थोड़ा कठिन तो पड़ेगा, परंतु ज्ञानी पुरुष के वचन की अपूर्वता से, वचन की अपूर्वता को नहीं, ज्ञानी पुरुष के, ज्ञानी पुरुष के वचन की अपूर्वता से, उस वचन का विचार करने से, तथा ज्ञानी के प्रति और पूर्व दृष्टि से देखने से मन का स्थापित होना सुलभ होता है, कठिन वाला भी सुलभ होता है। देखो तो कृपालु देव का शैली है, कार्य कहने की जो रीत है वो ऐसी है कि कोई बात वो कहते हैं तो वहां से एक प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञानी पुरुष के चरण में मन का स्थापित होना बहुत कठिन है, ऐसा स्थापित किया ना, प्रतिपादन ऐसा किया, तो वहां प्रश्न उठेगा कि ये कठिन होता है, वो कठिन नहीं होए और सुलभपणे कैसे होगा, तो इसका उत्तर दे दिया। ये प्रश्न वहां उठ सकता है कि ऐसी कठिन बात है वो आसान कैसे हो जाए, सुलभ कैसे हो जाए, ये तो दुर्लभ है। आप भी कहते हैं कि दुर्लभ है, क्योंकि दुर्लभ भी है और ये सुलभ होने का तरीका भी है, सब बात है। यही बात है दृष्टांत, क्या कि वचन की अपूर्वता से इनकी वाणी सुनने में अपूर्व अपूर्व भाव आए, अपने को अपूर्व भाव आए तो अपूर्वता भाषित होवे। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, क्लास वन ऑरेटर हो जाए तब ज्ञानी होता है, और ज्ञानी होता है तो क्लास वन ऑरेटर होता है, ऐसी बात नहीं है। वक्तृत्व कला वो ज्ञान दशा की बात नहीं है, ज्ञान दशा और वक्तृत्व कला में कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। वचन की अपूर्वता मतलब क्या, ये बात चर्चा करने का है कि वो जो अपूर्व बात बताते हैं, पूर्वे हमने ऐसी ऐसी बात कभी सुनी नहीं, ऐसा समाधान हमको कभी आया नहीं, हमारी उलझन और गुंथियां कभी सुलझी नहीं, ऐसा हमको मालूम पड़े अपने में समाधान होने से, और अपने में अपूर्व अपूर्व भाव पहले नहीं किए हैं, ऐसे आत्मकल्याण के दिशा में, आत्मकल्याण के मार्ग में जो अपूर्व भाव है वो आने लगे तो वचन की अपूर्वता मालूम पड़ेगी। ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसकी जो टेक्निक है वो ज्ञानी पुरुष जानते हैं और दर्शाते भी हैं, बताते भी हैं, तो वो टेक्निक समझ में आए तो उसकी अपूर्वता मालूम पड़े, वो समझ में नहीं आए तो अपूर्वता मालूम पड़े नहीं। सुनने वाले तो बहुत होते हैं, सबको मालूम पड़ती है, वो बात नहीं बनती। अपूर्व बहुत बोलते थे, अभी भी रोज अपूर्वता आती है, ऐसा कहते हैं, सुनते हैं तो रोजाना अपूर्वता आती है, नहीं नहीं गहराई में से भाव निकलते हैं, तो क्योंकि वो परिणमन करते हुए बोलते थे, वो मात्र भाषणबाजी नहीं चलती थी, परिणमन करते करते आत्मा को साधते साधते वो साधन बताते थे, तो उसमें अपूर्वता लगे बिना है नहीं, अगर समझ बराबर आए तो। वचन की अपूर्वता से और इस वचन का विचार करने से, विशेष रूप से विचार करें कि क्या क्या खूबियां हैं इसमें, कैसी कैसी बात कही, एक सूत्र जैसे सिद्धांत में कितनी गहराई होती है, कल रात को चर्चा चली थी, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है, तो कितनी गहराई है इसमें, क्या क्या फायदा होता है इसका, वचन का विचार करने से पता चले, पूरा अभिप्राय बदल जाता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, अभिप्राय बदल जाता है, अभिप्राय उनका अभिप्राय छोटा। हो गया ऐसा जो अपनापन है वो कहीं भी आता नहीं है। पर्याय सुधरे पर्याय में दोष का अभाव होकर सद्गुण प्रकट होवे, फिर भी उसका अहम भाव नहीं आए, यही मार्ग की सम्यक पद्धति है। उसी को ही मार्ग की सम्यक पद्धति कहने में आती है, वरना परिणाम में सुधार होवे और उसका अहम भाव आए बिना रहे नहीं। देखो, एक गृहस्थ आदमी होता है, दान देता है, क्या करता है, चलो अपने को धर्म के क्षेत्र में दान दो, या कोई करुणा का पात्र होता है या सुपात्र होता है उसको भी दान दिया जाता है। अब मैंने दान दिया ऐसा अहम भाव को नहीं करे, इसका तरीका क्या है? इसके पास मेरे पैसे था, मैंने दे दिए, 90,000 दे दिए, कितने आजकल कोई देते नहीं, 9,000 भी, लाखों में तो 9,000 भी देना मुश्किल है, लेकिन 90,000 दे दिया, तो मैंने दान दिया ऐसा अहम भाव को कैसे रोक सकता है? कौन सा तरीका है अहम भाव रोकने का? कि ऐसा पहले से ही भेद ज्ञान होवे कि ये संपत्ति मेरी थी
नहीं,
क्योंकि मैं छोड़ के चले जाने वाला हूं, मैं छोड़ के चले जाऊं इसके पहले इसका कोई सन्मार्ग में उपयोग हो जाए तो क्या बुरा है उसमें, ऐसे ही छोड़ना तो है ही, छुट्टी के तो सही, तो उसके पहले वो सन्मार्ग में लग जाए तो उसमें तो अच्छी बात है। तो मेरी नहीं थी इसलिए मैंने दिया, वो बात मैं मुझे लागू पड़ती नहीं है। एक विकल्प आया कि ऐसा सन्मार्ग में लग जाओ, तो लग गया, लगने वाला था, मेरी कोई संपत्ति थी, भूल में यहां से काटे तो मैंने दिया, वो बात अहम भाव की उत्पन्न होने वाली नहीं है, वरना आए बिना रहे नहीं। हाँ, ऐसा भिन्नत्व करे, जो गाथा है समय सार के, ऐसा भिन्नत्व कर ले तो अहम भाव आएगा नहीं, वरना आए बिना रहे नहीं। इसलिए इस वचन का विचार करने से तथा ज्ञानी प्रति अपूर्व दृष्टि से देखने से, वो क्या है कि ज्ञानी में जो गुण प्रकट हुए हैं उसकी अपूर्वता भाषित हुए तो उसमें अपूर्व ज्ञानी के प्रति अपूर्व दृष्टि हो जाए, अपूर्व दृष्टि से देखने से। ऐसे तो बाहर में तो सामान्य मनुष्य जैसे ही मनुष्य होते हैं, लेकिन उसका परिणमन को देखे तो ये परिणमन में अपूर्वता है, तो देखने की दृष्टि पूरी बदल जाती ही है, सारी दृष्टि बदल जाती है। संसार में होते हुए भी वो कैसे तीरते हैं वो बात समझ में आ जाए, यानी संसार में होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर भी तीरते हैं। हम शहर के मध्य में ट्रैफिक में गाड़ी चलाते कि नहीं चलाते, क्या करके चलाते हैं, तारवणी करते हैं, किसी से भी टक्कर लेते नहीं है, छूते भी नहीं, कितनी भी भीड़ हो हम चलाएंगे, बराबर चला सकते हैं, क्योंकि हमको आता है कि कैसे तीर के चलना, तरीने केम चालमू, तो हमको आता है। ऐसे पूर्व प्रारब्ध के वशात संयोग तो अज्ञान दशा में परिणमन किए हैं, इसके फल रूप सब संयोग तो होते ही है। ये जो संयोग है, ज्ञानी को भी जो संयोग है, वो भूतकाल में अज्ञान दशा में कर्म बांधा है उसका उदय आया है, उसको भी इसका उदय, अज्ञानी को भी ऐसा उदय है, ज्ञानी को भी ऐसा उदय है, क्योंकि दोनों को परिणाम अज्ञान दशा में हुआ है। अब अंदर में आत्मा ने पलटा खा लिया, आत्मा अंदर से बदल गया, तो उसको तिरने को आता है, तो तरीने डाले से वो तिर जाता है बराबर, कहीं तकलीफ है ओ। उसको क्या कहते हैं, तो पांडु जी बहुत अच्छा पराक्रम बोलते हैं, भुजाए करीने स्वयंभू रमण समुद्र जेने तेरो छे। એટલે શું, વાણમાં બેસીને નહીં, હોડીમાં બેસીને નહીં, સ્ટીમરમાં બેસીને નહીં, હાથ વીંજીને તરી તર્યો સમુદ્ર, સ્વયં ભ્રમણ સમુદ્ર એટલે અસંખ્ય યોજન જિસકી થોડાઈ હૈ આખરીકા, એસા સમુદ્ર કો જો હાથ સે તીર ગયા, ઇસસે ભી બડા પરાક્રમ જિસને કિયા, કિસને કિયા, જીસને મોહ રૂપી સ્વયં રમણ સમુદ્ર કો તીર ગયા, વો મોહ કો મારા, દર્શન મોહ કો મારા, યહી પ્રકરણ હૈ। દર્શન મોહ કો કૈસે મારના, યહી પ્રકરણ હૈ જ્ઞાનીઓ કે ઉપદેશ મેં। ગુરુદેવ ને ભી 45 સાલ તક વહી ઉપદેશ દિયા કે દર્શન મોહ કો કૈસે મારના, ક્યોંકિ સબસે બડા પરાક્રમ હૈ। એક મોહ કો મારા તો કર્મ કી સેના કે રાજા કો મારા, રાજા કો મારા, અભી સેના તો ભગને લગેગી, જબ પતા ચલ ગયા કે રાજા મર ગયા, હમારા રાજા મર ગયા, તો ભાગને લગેંગે, કોઈ કર્મ ફિર સામને આને વાલે નહીં હૈ, ખડે નહીં રહેંગે। ઇસી કો ઉપદેશ દેતે જ્ઞાની, ઇસકા હી ઉપદેશ દેતે હૈ। तो ऐसे जिसने मोह को मारा है और मोह के सामग्री के बीच में रहकर भी जिसको मोह होता नहीं है, ऐसी अपूर्व दृष्टि से कोई देखता है ज्ञानी पुरुष को, तो उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, उसके चरण में नमन कर लेता है, ढल जाता है। ऐसा महापराक्रम करने वाले ज्ञानी के चरण में मेरा नमस्कार हो जाए। ऐसे अपूर्व दृष्टि से देखने से मन का स्थापन होना सहज होता है, सुलभपणे से होता है और सहज होता है। देखो ये दर्शन मोह को की ताकत तोड़ने का है, ज्ञानी पुरुष का आश्रय रूप जो भक्ति मार्ग है, तो दर्शन मोह की ताकत तोड़ने का, उसकी शक्ति को तोड़ देने का सबसे उत्तम उपाय है। सबसे उत्तम उपाय भी है और सरल भी है, सबसे सरल भी है, सुगम भी है। दूसरे जो भी उपाय है वो उत्तम भी नहीं है और सरल भी नहीं है। ज्ञान मार्ग से शास्त्र पढ़ेगा तो सूक्ष्म ज्ञान का अहम शास्त्रीय अभिनिवेश पैदा हो जाएगा, क्रिया मार्ग में जाएगा तो असत अभिमान हो जाएगा। ज्ञान और क्रिया दो ही तो मार्ग है, तो कहीं नहीं, आश्रय भक्ति रूप जो मार्ग है वो मार्ग पसंद करने योग्य है। इसलिए सभी विचारवान जीवों ने यही मार्ग की पसंदगी किया है, पीछे 97 में लिया है वो बात, 693 नंबर के पत्र में ज्ञान मार्ग, क्रिया मार्ग और भक्ति मार्ग, तीन की बात लिया। अब कहते हैं और मार्गदर्शन देते हैं इस विषय में, ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले पंच विषय आदि दोष है, जिसको पंचेंद्रिय के विषय में तीव्र आसक्ति है, तो ज्ञानी पुरुष को के चरण के आश्रय रूप भक्ति मार्ग में जा सकेगा
नहीं।
और जो ज्ञानी पुरुष के आश्रय भक्ति मार्ग में जाएगा उसका पंचेंद्रिय विषय का तीव्र आसक्ति रहेगी
नहीं।
उसका परिणमन बदल जाएगा, खाने का, पीने का और कई प्रकार के जितने भी मोर शौक हो सब ठंडे फिक्के हो जाएंगे स्वतः ही, इतना सुलभ है वो बात। यानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले, यानी आश्रय नहीं करा कर सके ऐसा हो जाए, क्यों? ये पंच विषय आदि दोष है। पंच विषय मैंने पांच इंद्रिय के विषय, यह दोष होने का साधन से जैसा हो सके उतना दूर रहना। ये जो दोष होने के जितने जितने विषय हैं, वो विषय से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अभी खुद की इतनी दशा बलवान नहीं है कि उसके संग में रहकर के भी दोष को टाल सके, तो थोड़ा उससे दूर रहने के परिणाम करना चाहिए। उससे दूर रहना और प्राप्त साधन में दूर रहना, मैंने जुटाने का प्रयास मत करो, और पूर्व पुण्य के योग से प्राप्त हो, प्राप्त साधन हो को भी उसमें उदासीनता रखने। प्राप्त साधन को हटाना ऐसा नहीं लिखा है, है? प्राप्त साधन में उदासीनता रख लो, तुम हट जाओ ना, उसको तुम हटा नहीं सकते। अगर परिस्थिति ऐसे कि तुम उसको हटा नहीं सकते तो तुम उदासीन हो जाओ, तुम विमुख हो जाओ, तुम्हारा रस लेना बंद कर दो, फिर कोई आपत्ति नहीं है। और प्राप्त साधन में भी उदासीन रखना, उदासीनता रखनी, दोनों बात लिया है, क्योंकि किसी को साधन नहीं है, तो जिसको साधन नहीं है वो साधन को जुटाने के लिए हमेशा प्रयत्नवान रहता है, इसके पीछे ये लाएंगे, इसके पीछे वो लाएंगे, इसके पीछे वो करना है, इसके पीछे वो करना है, तो इससे तो दूर रहना। और जो आ गए हैं जो साधन, जो विषय मौजूद है पहले से ही, और विचार आया कब क्या करना है, तो उसमें रस को तोड़ देना, उसमें रस लेना निरस हो जाना, यानी उदासीनता रखनी। अथवा वह साधनों में से अहम बुद्धि छोड़ करके रोग रूप जान करके प्रवर्तन करना चाहिए। क्या है कि ऐसे साधनों से अहम बुद्धि मैंने स्वामित्व छोड़ देना, मालिकेपना छोड़ देना। ये जो पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त हो तो उस पर से अपना स्वामित्व उठा देना, ये चीज मेरी नहीं है, मेरी मालिकी की चीज नहीं है, तो अहम बुद्धि उठा देना। रस कहाँ आएगा, अपनापन हो वहां रस आता है, अपनापन नहीं है तो रस भी नहीं आता है। दो लड़के खेलते हैं हमारे घर में या आंगन में, दो लड़के खेलते हैं, एक पड़ोसी का और एक कहलाने वाले हमारा है, नहीं हमारा लेकिन कहा जाता है कि हमारा है, हा? तो रस कहाँ आएगा, पड़ोसी वाले में आएगा क्या?
नहीं।
वो अच्छा है, सुंदर है, गुणवान है, सब तरह से अच्छा है, हा? फिर रस किस में आएगा, अपनापन है वहां रस आता है, तो निरस होने के लिए अपनापना उठा देना, तो मेरी चीज नहीं है, एक वास्तव में मेरी चीज
नहीं है
और है भी नहीं, क्योंकि अस्तित्व तो अपना भिन्न है, अपना अस्तित्व और संयोग का अस्तित्व भिन्न भिन्न अस्तित्व है, जहाँ हमारा अस्तित्व नहीं है वहाँ हमारापन कहाँ से आया, आना चाहिए नहीं। वह साधनों में से अहम बुद्धि छोड़ करके रोग रूप जान करके प्रवृत्ति करना चाहिए। रोग रूप जान करके क्या, फिर भी परिणाम तो जाएंगे, फिर भी उदय है, खाने का पीने का सब प्रकार का जो उदय है पंचेंद्रिय का विषय का, तो उसमें क्या कल्पना करना कि ये मेरा रोग है, वो मिटे तो अच्छा, क्या रोग है वो मिटे तो अच्छा, उसको रोग जानना। रोग को व्याधि कहते हैं, उसको व्याधि समझना कि ये रोग पहले से चला आ रहा है, अभी मिट जाए तो अच्छा है, तो आस्ते आस्ते उसका रोग का डिग्री कम हो जाएगा और वो नाश हो जाएगा। अनादि दोष के ऐसे प्रसंग में विशेष उदय होता है, अनादि दोष का ऐसा प्रसंग में विशेष उदय होता है, यानी अनादि का जो जीव का दोष है पंचेंद्रिय के विषय में रस वाला परिणाम करना, वो उदय के काल में विशेष रूप से रस को धारण कर लेता है। क्यों? कि पहले से मान रखा है कि ये चीज अच्छी है, हलवा अच्छा है, वो मान रखा है, तो हलवा थाली में आएगा तो रस आए बिना रहेगा नहीं। फलानी हाफूस कैरी अच्छी है, उसमें रस आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि उसका प्री कॉन्सेप्ट वो पूर्वग्रह है, वो रस को पैदा कर देता है। इसलिए अनादि दोष का ऐसे प्रसंग में, ऐसे मैंने उदय के काल में विशेष उदय होता है, क्योंकि आत्मा उस दोष को छेदने के लिए अपने सन्मुख लाता है, कोई प्रयत्न करता है, आत्मार्थी होता है, अपना दोष को छुड़ाने के लिए जब दोष छोड़ने के सन्मुख जाता है, दोष छोड़ने का प्रोसेस जब उसको होता है, तो वो स्वरूपांतर करके उसको आकर्षित करता है, उदय में आएगा, जल्दी से उदय में आएगा, उसको मोह हो जाए, ऐसा इस प्रकार का उदय सामने आ जाएगा, उसको छोड़ना है दोष, तो उदय सामने से आएगा, वो भगना चाहता है तो वो उसके पीछे पीछे आता है। त्यागे उसको आगे और मांगे उसको भागे, जो उसके पीछे पड़ता है तो मिलता नहीं है, वो छोड़ने को जाता है तो वो सामने से आता है। अब परीक्षा होती है, कसौटी होती है कि किस कैसे परिणाम रहते हैं। तो रूपांतर मैंने रूपांतर करके वो आकर्षित करता है, और जागृति में शिथिलता, जागृति में भी शिथिलता करा देता है, और अपने अपने में एकाग्र बुद्धि करा देता है। आकर्षित करके क्या होता है, आकर्षण होते ही एकाग्रता आ जाती है उसमें, ऐसा हो जाता है। छोड़ने को जाता है तो थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, चीज सामने आएगी। अपने विषय एकाग्र बुद्धि करा देता है, वह एकाग्र बुद्धि इस प्रकार की होती है, यानी खुद को ऐसा समाधान आ जाता है, झूठा समाधान, कि मुझे यह प्रवृत्ति से कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है, मुझे कोई खास नुकसान नहीं होगा, धीरे धीरे मैं उसको छोड़ दूंगा, और अनुक्रम से उसको छोड़ूंगा, धीरे धीरे मैं उसको छोड़ूंगा, और फिर भी ऐसी प्रवृत्ति में मैं जागृत भी रहूंगा, मैं जागृत रहूंगा, इसलिए मुझे नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से जीव झूठा समाधान कर लेता है। ये आदि भ्रांत दशा, ऐसी भ्रांति से ये दोष करता है, जिससे उस दोष का संबंध जीव छोड़ता नहीं, यानी ये सब दोष चालू रहता है, उसको संबंध नहीं छोड़ता, मतलब इस प्रकार के दोष उसका चालू ही चालू रहता है, यानी ऐसा दोष बढ़ता है, उसका लक्ष्य उसको आ सकता नहीं है, और दोष बढ़ जाता है तो भी उसको पता नहीं चलता है कि मेरा दोष कितना बढ़ गया। इस तरह से जीव खुद अपने आप को धोखा दे देता है। ऐसे विरोधी साधन का दो प्रकार से त्याग हो सकता है। अब क्या है कि ऐसा दोष मिटाने की जो कार्य पद्धति है, इसमें परिस्थितिवश इसका इलाज दो प्रकार का होता है। जैसे रोग होता है तो रोग की जो परिस्थिति है उसी अनुसार उसका इलाज होता है। बुखार तो बुखार है, लेकिन 105-6 डिग्री का बुखार हुए तो डॉक्टर कहेंगे कि एक्यूट पोजीशन में आ गया है दर्द। क्या आया है दर्द? एक्यूट पोजीशन में आया है, तो उसको भारी से भारी इंजेक्शन दे करके उसको डिग्री जो है वो गर्मी के नीचे ले आएगा, और ऐसा इलाज करने में थोड़ा नुकसान होगा तो भी अभी जो वर्तमान में रिस्क खड़ा हुआ है वो रिस्क से हटा देगा, उसको जोखिम नहीं चाहिए, फिर 101 डिग्री हो गया तो फिर इलाज करना आसान है। तो एक तो रोग की एक्यूट पोजीशन होती है, दूसरी रोग की क्रॉनिक पोजीशन होती है। तो क्रॉनिक पोजीशन वाला जो रोग है उस पर हमला नहीं किया जाता है, उसको ऐसी दवा लॉन्ग पीरियड से दिया जाती है और मूल में से उसको हटाया जाता है। और एक्यूट पोजीशन वाला भी थोड़ा माइल्ड हुआ तो उसको मूल में से हटाने का प्रयत्न करना है, फिर वही पद्धति में आना है। तो रोग को मूल से हटाना है, ऐसे जीव को विभाव भाव की जड़ काटना है। क्या? विभाव भाव की जड़ काटना है, ऊपर ऊपर से पाटापिंडी नहीं करना है। फिर अंदर में दर्द रह जाए और कोई तकलीफ दे दे, ये कोई सही तरीका नहीं है। ऐसे विरोधी साधन का दो प्रकार से त्याग हो सकता है। एक तो साधन के प्रसंग की निवृत्ति, एक्यूट पोजीशन में हो तो उसका त्याग कर देना, तीव्र अगर तीव्र विभाव होता है तो ये विषय का त्याग कर देना। और दूसरा प्रकार विचारने से तो उसका तुच्छपने समझ में आना, तुच्छता मैंने उसका कोई मूल्यांकन नहीं है, इससे कोई मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, कि मेरी कल्पना है, तो उसकी जो तुच्छता समझ में आएगा तो निरस हो जाएगा परिणाम, क्योंकि उतना तीव्र परिणाम नहीं चलता है तो निरस होना आसान है। इस प्रकार से दो बात कैसे लिया, एक तो बाह्य परिस्थिति में त्याग लेना, प्रसंग की निवृत्ति मैंने बाह्य त्याग, और अंतर त्याग अंदर से उसकी तुच्छता समझना, उसका मूल्य निर्मूल्य हो जाए ऐसी विचारधारा में आ जाना, तो फिर निरस्ता आ जाएगी। इस प्रकार से ये जो विरोधी साधन है बाहर में, जितने भी उदय के प्रसंग है पंचेंद्रिय के विषय के, उसमें के चक्कर में हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, वो कैसे नहीं बिगड़े, इसका मार्गदर्शन यहाँ दिया है। और कुछ बातें हैं समय